हरे कृष्णा। महाभारत की इस कक्षाओं में आप लोग जो नियमित तौर से आ रहे हैं, आप सबका स्वागत है। पिछली बार चर्चा की थी कि कैसे जरासंध के वध के बाद राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई। अलग अलग दिशाओं में पांडवों ने विजय प्राप्त की और फिर राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और राजसूय यज्ञ में कई लोगों को सेवाएं दी गईं। पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि कैसे स्वयं श्री कृष्ण अपने उदाहरण से हम सबको ये सिखलाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करने में कोई भी सेवा, चाहे वो अतिथियों का स्वागत करने की ही सेवा क्यों ना हो, बड़े उत्साह से करना चाहिए। और श्री कृष्ण दिखलाते हैं कि कैसे जब नम्रता से हम लोग सेवा को स्वीकार करते हैं, अपने आप को बड़ा तुच्छ मानते हुए, तो ऐसी सेवा से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो श्री कृष्ण ने भी सेवा की, ब्राह्मणों के चरणों को धोकर उन्होंने उनका स्वागत किया। तो ऐसे ये सारा यज्ञ हुआ। वैसे हम बतला रहे थे कि ये सारा जो यज्ञ हुआ, इसका उद्देश्य एक ही था, श्री कृष्ण का गुणगान। और केवल साधारण गुणगान नहीं, श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करना, ये इस यज्ञ का उद्देश्य था। युधिष्ठिर सम्राट कहलाना चाहते थे, ये उद्देश्य नहीं था, ये तो बाहरी उद्देश्य था। और ये कैसे हुआ, इसको समझाते हैं। अब जब यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, सबकी सेवाएं हुई, भगवान स्वयं सेवा कर रहे हैं, कभी कभी मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर वो भगवान हैं तो उन्हें सेवा करने की क्या आवश्यकता है। सेवा तो जीव को करना चाहिए, सेवा तो हम सबको करनी चाहिए भगवान की, तो भगवान क्यों सेवा करते हैं। भगवद गीता में भगवान इसका उत्तर देते हैं। अर्जुन से वो कहते हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। ऐसा नहीं है कि तीनों लोकों में या कहीं पर भी मेरे लिए कोई कर्तव्य लिखा गया है कि ये तो आपको करना ही चाहिए। नहीं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम। तो फिर भी क्यों वो कार्य करते हैं, तो उसको भी भगवान बताते हैं कि मैं फिर भी कार्य करता हूं जबकि मेरे लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कार्य करता हूं एक आदर्श, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तद एवे तरोजनः। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, नेता आचरण करते हैं, समाज के वरिष्ठ आचरण करते हैं, घर के वरिष्ठ आचरण करते हैं, वैसे ही बाकी लोग उनका पालन करते हैं। तो इसीलिए वो कार्य करते हैं। और फिर वो अर्जुन से भी कहते हैं कि अगर मैं कार्य ना करूं तो ये जितने भी लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो कार्य नहीं भी करना है और कार्य करते भी हैं। तो करना नहीं है अर्थात नियत नहीं है, हम सब के लिए कार्य दिया गया है, हमें करना ही है। हम अपने कार्य से, अपनी सेवा से बच नहीं सकते। और जो व्यक्ति बचता है अपनी सेवा से, करता नहीं है, उसको जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। बहुत सरल है भक्ति के इस सिद्धांत को समझना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को करता है वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता नहीं है, वो फिर भगवान को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं करता वो इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर कष्ट भोगता है। बड़ा सरल है, बस यही दो बातें हैं, या तो अपना कर्तव्य करें और भगवान को प्राप्त करें, या फिर अपना कर्तव्य ना करें और फिर इस जगत में कष्ट सहते हुए बारंबार एक के बाद एक शरीर को ग्रहण करें। तो इसीलिए भगवान कर्तव्य करते हैं, या भगवान कार्य करते हैं एक उदाहरण देने के लिए कि कैसे कार्य होना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने ऐसे किया और अब यज्ञ प्रारंभ होना था। तो भीष्म देव ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर अब आप अग्र पूजा कीजिए। अग्र पूजा अर्थात जितने भी यहाँ राजा हैं उनमें से जिनको आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उनकी पहले पूजा कीजिए और फिर धीरे धीरे सारे राजाओं की पूजा कीजिए। यज्ञ में ये नियम है, किस लिए पूजा की जाती है, उनका आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि आप आए इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और युधिष्ठिर ने ये प्रश्न किया भीष्म देव से कि आप कह रहे हैं कि अग्र पूजा होनी है, किसकी होनी चाहिए। श्रीपद मध्वाचार्य बहुत सुंदर टिप्पणी इस पर करते हैं। वो कहते हैं कि भीष्म ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण की होनी चाहिए अग्र पूजा। तो उन्होंने वहां पर उपस्थित बड़े बड़े ऋषि मुनियों की अग्र पूजा को क्यों नहीं कहा। व्यासदेव वहां पर उपस्थित थे, मध्वाचार्य तो कहते हैं ब्रह्मा जी उपस्थित थे, इंद्र उपस्थित थे, रुद्र उपस्थित थे, क्योंकि सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि सब आए थे। तो उनके लिए क्यों नहीं कहा कि अग्र पूजा होनी चाहिए, श्री कृष्ण के लिए क्यों कहा। तो मध्वाचार्य बहुत सुंदर बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर व्यासदेव की अग्र पूजा हो जाती या ब्रह्मा जी की कर देते तो कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है, व्यासदेव तो पूजनीय है, तो अगर उनकी पूजा होती कोई विरोध नहीं होता। तो भीष्म देव या फिर युधिष्ठिर चाहते थे कि विरोध हो अग्र पूजा में, ताकि कृष्ण की जो परम सत्ता है उसको स्थापित कर सकें, ताकि ये बतला सकें जमाने को, दुनिया को दिखला सकें कि कृष्ण ही भगवान है। और इसीलिए अगर विरोध नहीं होगा तो अवसर नहीं मिलेगा बोलने का, तो इसीलिए श्री कृष्ण को चुना गया और श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। तो श्री कृष्ण को बिठाया गया, उनके चरण धोए युधिष्ठिर ने, अर्घ इत्यादि अर्पित किया, पूजा की। और जैसे ही अग्र पूजा हुई शिशुपाल उठकर खड़े हो गए। अब तक नहीं बोले थे, शिशुपाल सुन रहे थे कि हाँ कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। अग्र पूजा प्रारंभ हो गई, कुछ नहीं कहा शिशुपाल ने। लेकिन जैसे ही अग्र पूजा पूरी हुई तब शिशुपाल उठकर खड़े हुए। तो इसको भी समझाया गया, क्यों शिशुपाल ने पहले ही विरोध नहीं किया। जब भीष्म ने कहा कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा करो तभी शिशुपाल विरोध करते कि ये गलत है, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वो इस सारे ये जो यज्ञ है राजसूय यज्ञ, इसको समाप्त करना चाहते थे कि ये गलत हो गया, तुमसे गलती हो गई, अब ये यज्ञ नहीं हो सकता। तो अगर पहले रोक देते तो शायद गलती को सुधार कर यज्ञ बढ़ जाता आगे। तो शिशुपाल की इच्छा थी यज्ञ हो नहीं, और इसीलिए वो रुके रहे। और जैसे ही कृष्ण की अग्र पूजा हो गई तो उन्होंने उठकर बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा, भीष्म को संबोधित करते हुए कहा, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा कि ये क्या किया आपने, किसकी अग्र पूजा कर दी, ये तो राजा भी नहीं है। अरे राजाओं की अग्र पूजा होनी थी, ये तो राजा भी नहीं है। और ऐसा व्यक्ति ना जो गुरु है ना आचार्य है, न पुरोहित है, न राजा है, ऐसे व्यक्ति की अग्र पूजा आपने कर दी। पांडवों से कहने लगे, आप बच्चे हो, आप छोटे हो, आपको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, और ये भीष्म ये बूढ़े हो गए हैं, इनको कुछ पता नहीं है। अर्थात शिशुपाल कह रहा था, मैं सबसे समझदार आदमी हूँ, आप बच्चे हो, आपको पता नहीं, ये बूढ़े हैं, इनकी स्मृति नहीं रही, एक मैं ही समझदार व्यक्ति हूँ, है ना। हम लोग भी सब ऐसे ही करते हैं ना, छोटे बच्चों को हम शिक्षाएं देते हैं, तुम ऐसे करो ऐसे करो, और जो बूढ़े हो गए उनको बोलते हैं, आपको कुछ पता नहीं, आप बैठ जाओ चुपचाप। तो शिशुपाल भी ऐसे ही कह रहे थे। तो जब भी व्यक्ति निंदा करता है तो ये जान लीजिए कि वह अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, इसीलिए दूसरे की निंदा करता है ना? जैसे शिशुपाल पांडवों को कह रहा है कि तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आया, और भीष्म को कह रहा है आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी स्मृति चली गई। तो दोनों की निंदा कर रहा है, लेकिन चाहता क्या है, लोग क्या समझें कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। तो जहां भी व्यक्ति निंदा करता है, निंदा करने के पीछे छिपी हुई भावना यही होती है कि मेरा गुणगान हो। वही व्यक्ति निंदा करता है जो अपना गुणगान करवाना चाहता है, नहीं तो निंदा नहीं करे। अगर शिशुपाल को ये कहना ही था कि ये आप गलती कर रहे हैं, तो दूसरी तरह से कह सकता था, निंदा नहीं कर सकता, करना चाहिए था। तो शिशुपाल ने ऐसा कहा और बहुत कुछ कहने लगे श्री कृष्ण को। उन्होंने भीष्म को कहा, वहां उपस्थित बाकी लोगों को कहा, वो पूछने लगे कि अरे आपको अगर किसी बड़े का पहले मान सम्मान करना था तो भीष्म स्वयं है, युधिष्ठिर से कहा, भीष्म है, वो सबसे बड़े हैं उम्र में, यहाँ पर द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, आपने उनका मान क्यों नहीं किया पहले, उनकी अग्र पूजा क्यों नहीं की, अगर किसी बड़े की करनी है और किसी राजा की करनी थी तो इतने सारे राजा यहाँ उपस्थित हैं, उन राजाओं की आपको करनी चाहिए थी। द्रुपद हैं, उन्होंने कहा, यहाँ पर द्रुपद महाराज हैं, अन्य राजा हैं, तो उनकी आपको पूजा करनी चाहिए थी। और अगर आपको ऋषि मुनियों की करनी है तो व्यासदेव उपस्थित हैं। मतलब सब तरह से वो समझा रहे थे कि आपने बड़ी गलती की, ये कृष्ण को चुना ही क्यों आपने, और भी बहुत कुछ उन्होंने कृष्ण के विषय में कहा कि ये ग्वाला है, ये इस प्रकार से करता है, इसलिए अपने बंधुओं को ही मार देता है, अभी अभी धोखे से जरासंध का वध करके आया है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ कह दी। श्री कृष्ण चुपचाप बैठे सुन रहे थे। भीम से सहन नहीं हुआ, भीम खड़े हुए, भीम मारने के लिए गए तो भीष्म ने रोक दिया। उस समय भीष्म ने गुणगान किया, अब सारे जो आयोजन का उद्देश्य था अब सामने आया। भीष्म ने बोलना शुरू किया, ये कृष्ण कौन है, और भीष्म ने प्रारंभ किया कि कब सृष्टि प्रारंभ होती है, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। और देखिए भीष्म से गुणगान क्यों कराया जा रहा था, क्योंकि वहां उपस्थित सभी लोग जानते थे कि भीष्म शास्त्रों में बहुत दक्ष हैं, इन्हें शास्त्र पता हैं, इन्होंने बृहस्पति से सीखा है, बृहस्पति के शिष्य थे भीष्म। तो इसीलिए ये जो कहेंगे शास्त्र के अनुसार कहेंगे और ये बात सही कहेंगे। तो भीष्म ने कहा कि जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो उससे भी पहले महाविष्णु आते हैं, और ये महाविष्णु श्री कृष्ण से आते हैं, और फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। हर एक जीव के हृदय में यही श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। और फिर इतना ही नहीं, भीष्म ने अलग अलग अवतारों का वर्णन किया, बहुत से अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, इन सब का वर्णन किया कि यही श्री कृष्ण हैं जो अलग अलग रूपों में आते हैं, और बड़े विस्तार से वो भगवान के इन अवतारों का वर्णन कर रहे थे। जैसे नरसिंह देव का वर्णन करते हुए उन्होंने जय विजय की कथा कही, उन्होंने कहा कि कैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत उत्पात मचाया था और फिर नरसिंह देव प्रकट हुए, वामन देव की कथा उन्होंने कही, बड़े विस्तार से कथा चल रही और सब सुन रहे हैं। ये उद्देश्य था राजसूय यज्ञ का। इतना जो धन व्यय हुआ, सारे ब्रह्मांड से लोगों को बुलाया केवल इसलिए कि वो कृष्ण कथा को सुन सके। इसीलिए युधिष्ठिर जैसे लोगों को भूरिदा जना कहा जाता है। भूरिदा जना अर्थात जिन्होंने अपनी सारी शक्ति श्री कृष्ण के गुणगान में लगाई। इतना बड़ा आयोजन, इतने सारे लोग केवल श्री कृष्ण के गुणगान के। सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आ रहे थे देखने के लिए कि ये युधिष्ठिर है कौन, जिसके राज्य में स्वयं भगवान रह रहे हैं और रह ही नहीं रहे हैं, आने वाले लोगों के पांव धो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपने आप को छोटा मानते हैं, तो हमें जाकर देखना चाहिए ये व्यक्ति है कौन। तो ऐसे यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो शिशुपाल जब इतना विरोध करने लगे तो फिर भीष्म ने ये वर्णन किए। तो सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद फिर कृष्ण का वर्णन किया। कृष्ण के जन्म का वर्णन हुआ कि कैसे कृष्ण का जन्म देवकी से हुआ, फिर कृष्ण को लेकर वसुदेव जी गोकुल चले गए, ये सारा वर्णन उन्होंने किया। और उसके बाद उनकी लीलाओं का वर्णन, देखिए सारे राजा बैठे हैं, यज्ञ होना है, शिशुपाल ने विरोध किया और भीष्म क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथा, कृष्ण के जन्म की कथा। फिर उन्होंने कैसे पूतना का वध किया, शकटासुर का वध किया, कालिया का दमन किया, ये सारी लीलाएं चल रही हैं और लोग बड़े आनंद से सुन रहे हैं, स्वयं कृष्ण भी सुन रहे हैं कृष्ण भी बैठकर सुन रहे हैं अपनी ही लीलाओं को। अपनी ही लीलाओं को सुनने में क्या आनंद आता होगा कृष्ण को, बताइए। आप सबको तो अपनी लीलाएं सुनने में बड़ा आनंद आता है, हम जानते हैं। कोई आकर आपको कहे आपने ऐसा ऐसा किया, आप बहुत अच्छा, और बोलो और बोलो, अच्छा लगता है ना। क्या भगवान को भी अच्छा लगता है जैसे हमें अच्छा लगता है? हमें आकर कोई कहे कि आप बचपन में जब थे तो आपने बहुत विशाल बहुत महान कार्य किया था, आप एक बार टेबल के ऊपर से गिर गए थे, आप बोलेंगे वाह वाह और बोलो और। फिर आपको चोट लग गई थी, आपकी माँ ने आपको दवा लगाई थी, बस यही महान कार्य हुआ था। तो ऐसे सुनकर आनंद हमें आता है, लेकिन क्या कृष्ण को, कृष्ण तो भगवान है, उनके तो कोई अहंकार नहीं है, उनको तो कोई मान सम्मान की कामना नहीं है, तो वो क्यों अपनी कथा सुनते हैं, उनको क्या आनंद आता है अपनी कथा सुनने में? वो भी अपनी कथा सुनते हैं क्योंकि वो भक्तों के बारे में सुनना चाहते हैं। भगवान की कथाएं बिना भक्तों के अपूर्ण हैं। कृष्ण की कथा पूर्ण तभी होती है जब यशोदा का वर्णन होता है, नंद बाबा का वर्णन होता है, गोप गोपियों का वर्णन होता है, गायों का वर्णन होता है, वृंदावन का वर्णन होता है, गोवर्धन का वर्णन होता है, यमुना का वर्णन होता है, तब कृष्ण कथा पूर्ण होती है। अन्यथा केवल कृष्ण का वर्णन तो किसी कृष्ण कथा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण के गुणों में से एक गुण है वो कभी भी अपने भक्तों से घिरे होते हैं, अकेले कभी नहीं होते हैं। इसीलिए कृष्ण की पूजा अकेले नहीं की जाती। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए, केवल अज्ञानी व्यक्ति है जो ऐसी पूजा करता है। वो कहते हैं कृष्ण भजे केवल सो अज्ञानी, वो अज्ञानी है। बहुत सुंदर वो भजन है जिसमें वो कहते हैं राधा भजने जदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब कारण गेला, अगर श्रीमती राधा रानी के भजन में आपकी रुचि नहीं हुई है तो फिर कृष्ण का भजन व्यर्थ है। क्यों? आतप रहित सूर्य नहीं जानी, सूर्य नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी, माधव नहीं मानी। उदाहरण देते हैं कि जैसे आतप रहित सूर्य नहीं जानी, ऐसा हो सकता है कि सूर्य निकला है पर गर्मी नहीं है, उसकी किरण नहीं है। लेकिन हम कहें सूर्य बहुत तेज है, सूर्य निकला है लेकिन कोई किरण नहीं, नहीं, सूर्य की किरण को देखकर ही सूर्य को माना जाता है। आतप रहित सूर्य ना ही मानी, तो अगर उसमें किरणें नहीं हैं, प्रकाश नहीं है, तो फिर वो सूर्य नहीं है। और इसी तरह राधा विरहित माधव ना ही जानी है, तो माधव की भक्ति भी श्रीमती राधा रानी के साथ ही होनी चाहिए। इसीलिए कभी भी श्री कृष्ण को अकेले पूजा नहीं की जाती है। तो कृष्ण अकेले पूजा नहीं होनी है, कहीं कहीं जगह पर है, भगवान की लीला है, वहां पर भी पूजा के समय उनको ऐसे अकेले पूजा नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर विशेष, जैसे उडुपी में हम लोग देखते हैं श्री कृष्ण, वो बाल रूप है उनका, इसीलिए बाल कृष्ण हैं, तो जैसे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उनकी अकेले हो सकती है पूजा, क्योंकि बाल्यावस्था में तो राधा रानी नहीं थी, इसीलिए बाल गोपाल की पूजा अकेले की जाती है। लेकिन श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ ही, अगर शास्त्र प्रमाणित देखें तो होना चाहिए। तो इसीलिए बाल गोपाल उडुपी में जो है वो ठीक है, आपके मन में आएगा अरे उडुपी में राधा रानी नहीं है तो वो क्या गलत है, नहीं वो सही है। तो इसीलिए कृष्ण भी सुनते हैं अपनी कथा, तो वो भी बैठे सुन रहे हैं, उनको भी बड़ा आनंद आ रहा है, वो भी सुन रहे हैं कि कैसे उन्होंने पूतना का वध किया, कैसे उन्होंने कालिया का दमन किया और फिर क्या क्या हुआ। जब रामचंद्र जी आए थे तो उन्होंने सुना, रामचंद्र जी राज्य कर रहे थे तो उन्होंने सुना कि दो बालक हैं जो अयोध्या में घूम रहे हैं और गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? श्री रामचंद्र जी की लीला रामायण, जो कि वाल्मीकि मुनि ने रचना की थी और इन दो बालकों को सिखा दिया था। कौन थे दो बालक? लव और कुश, उनके ही पुत्र हैं, और वो गा रहे हैं सड़कों पर रामायण को। देखिए, भगवान का गुणगान करना सड़कों पर ये पहले से है। लोग कहते हैं कभी कभी इस्कॉन के भक्त अगर सड़कों पर जाकर कीर्तन करते हैं तो लोग कहते हैं ये क्या नया इन्होंने किया है, भक्ति करनी है घर में बैठ के करो, सड़कों पे क्यों कीर्तन कर रहे हो। ये तो बहुत पुरानी प्राचीन प्रथा है। लव कुश सड़कों पर कीर्तन कर रहे थे, सड़कों पर घूम घूम कर, और बहुत लोग किया करते थे और सारे निवासी खड़े होकर सुन रहे हैं। तो ये बात श्री रामचंद्र जी तक पहुंची और उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ उन दोनों को, और एक सभा बिठाई गई। रामचंद्र जी बैठे, अपने भाइयों को कहा बैठो, मंत्रियों को कहा बैठो, सारे सभासदों को कहा, सारे नागरिकों को कहा, और क्या सुनो? राम की कथा। और उस सभा में लव और कुश ने रामायण कही, तो रामचंद्र जी भी खुद बैठकर सुन रहे थे रामायण की कथा, कैसे राम का जन्म हुआ, कैसे वनवास हुआ, ये सब कथाएं, और बड़े आनंद से सुन रहे हैं। तो भगवान को भी आनंद आता है क्योंकि उसमें उनके भक्तों की कथा होती है, भक्तों के नाम होते हैं, भगवान भक्तों के कथाओं को सुनकर आनंदित हो जाते हैं। क्योंकि जो भी लीला वो सुन रहे हैं, जैसे वो सुनते हैं कि पूतना का वध हुआ, कृष्ण सुन रहे हैं, और यशोदा बहुत विचलित हो गई, यशोदा ने उठा लिया कृष्ण को और बहुत ध्यान करने लगी, सोचने लगी इसके ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, ये सुनकर कृष्ण को आनंद आता है कि यशोदा का कितना प्रेम है मेरे लिए, ये आनंद देता है कृष्ण। तो कृष्ण को अहंकार नहीं है हमारी तरह कि जब हम सुनते हैं कि हमारा कोई गुणगान करता है तो हमारा और अहंकार बढ़ जाता है, बहुत अच्छा और बोलो और बोलो, अच्छा लगता है कानों में। कृष्ण को अहंकार नहीं, कृष्ण भक्तों की बातें सुनकर उनको आनंद आता है, तो इसलिए अपनी ही लीला में वो आनंद लेते हैं। और एक कारण है कृष्ण अपनी लीला में आनंद लेने का, क्योंकि उनकी लीला के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये जगत भी उनकी लीला है, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो उनकी लीला है। तो वो जो भी सुनते हैं वो उनकी ही लीला है, तो वो सुने क्या, जो भी है वो उनकी लीला है, इसीलिए उसको सुनते हैं। तो ऐसे कृष्ण भी बैठे सुन रहे हैं, भीष्म देव ने सारा गुणगान कर दिया कि कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग अवतार लिए, फिर कृष्ण का वर्णन हो गया और उन्होंने समझाया कि यही भगवान है, यही परमात्मा है जो सबके हृदय में है, प्रमाण दिए शास्त्रों से, और सब वहां व्यासदेव स्वयं बैठे हैं जो शास्त्रों की रचना करते हैं और वो सुन रहे हैं, और इसीलिए लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि अगर अलग भीष्म अगर गलत बात कहते तो व्यास विरोध करते, शास्त्र तो उन्होंने लिखे, व्यासदेव के सामने वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण से ही महाविष्णु आते हैं, फिर महाविष्णु से आगे गर्भोदक्षाई और फिर उनसे ब्रह्मा जी और फिर जगत की उत्पत्ति होती है, व्यासदेव स्वीकार कर रहे हैं। अगर गलत होता तो व्यासदेव विरोध करते कि नहीं, मैंने शास्त्र लिखे, मैं जानता हूं ये गलत है, नहीं। तो भीष्म देव ने ऐसे श्री कृष्ण का गुणगान किया सारी सभा में, तो उसको सुनकर शिशुपाल को और क्रोध आ गया। देखिए आसुरी स्वभाव, कृष्ण की कथा जब भक्तों के हृदय में प्रवेश करती है तो शुद्ध कर देती है, वही कृष्ण कथा द्वेषियों के हृदय में जाती है या कानों में जाती है, वो अपने कान बंद कर लेते हैं, उनके हृदय में नहीं पहुंचती, उनका द्वेष और बढ़ जाता है। शिशुपाल का द्वेष बढ़ गया, उसने कृष्ण कथा सुनी, कृष्ण का जन्म, कृष्ण के अवतार ये सब सुना, द्वेष बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है हम सबके लिए कि हमें कैसे कृष्ण कथा सुननी चाहिए। अगर कृष्ण कथा से हमारे हृदय में द्वेष बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति गलत भाव आ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो इसका अर्थ है हम सही दृष्टि से या सही भाव में हम सुन नहीं रहे हैं, श्रवण हमारा सही भाव का नहीं। लेकिन अगर कृष्ण कथा सुनने से हमारे हृदय में सभी लोगों के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो रहा है, हमारे हृदय में दूसरों के प्रति अच्छा भाव आ रहा है, हमारा द्वेष कम हो रहा है, हम लड़ाई झगड़े से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम मान प्रतिष्ठा को त्यागने का प्रयास कर रहे हैं, तो मानना चाहिए कि सही दृष्टि में कृष्ण कथा आपके हृदय में प्रभावित हो रही है। तो शिशुपाल और क्रोधित हो गया ये सब सुनकर, और फिर से उसने युद्ध के लिए ललकारा, और भीष्म को उस समय बहुत गुस्सा आया, सहदेव को गुस्सा आया। महाभारत में वर्णन है कि सहदेव ने खड़े होकर कह दिया कि जो भी कृष्ण का विरोध करते हैं मैं उनके सर के ऊपर अपना पांव रखता हूं। ये बड़े अपमान की बात है ऐसा कहना सारे राजाओं में। देखिए हम लोगों के लिए सुनना कोई अपमान की बात नहीं है, हम लोग तो इतने कलयुग में उस संस्कारों को त्याग चुके हैं कि हमें लगता है क्या हो गया अगर किसी ने कह दिया। लेकिन वो राजाओं के लिए जो बड़े बड़े सम्मानित राजा थे, उनके लिए सुनना कि सहदेव कह रहे मैं उनके सर पर पांव रखता हूं, मतलब उनको एकदम नकारता हूं, उनको एकदम नीच मान, सर पर पांव किसके रखा जाता है, दासों के, जो जो हार चुके हैं, पराजित हो चुके हैं, शत्रु हैं। तो सहदेव ने कहा जो भी कृष्ण के विरोधियों मेरे शत्रु हैं उनके सर पर पांव रखता हूं। भीष्म की तरफ देखा, कुछ कुछ राजाओं को अच्छा नहीं लगा, भीष्म की तरफ देखा, युद्ध करना है। भीष्म ने कहा मैं उन सारे राजाओं का जो श्री कृष्ण का विरोध करना चाहते हैं उनको तिनकों के समान मानता हूं। देखिए ये सबके सामने हो रहा है, और ये राजा कोई ऐसे नहीं थे जो युद्ध नहीं कर सकते, ये राजा ऐसे नहीं थे डरपोक कायर राजा, सब अपनी अपनी सेना के साथ बैठे हैं, अभी तलवार निकाल के युद्ध कर सकते हैं। भीष्म कहते हैं सब तिनकों के समान है अगर वो कृष्ण का विरोध कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर शिक्षा सहदेव देते हैं, कृष्ण भक्ति में व्यक्ति को निडर होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए और निर्भयता से उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो कृष्ण के विरोधी हैं। लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं उनके दास बनना चाहिए, उनके चरण धोने चाहिए, श्री कृष्ण ने धोए। तो ये भक्ति के मार्ग में सीखना है, जो भक्त हैं उनके साथ बड़ा नम्र रहना, लेकिन जो विरोधी हैं सहदेव दिखलाते विरोध करना चाहिए उनका। और भीष्म ने भी कह दिया तिनकों के समान है मेरे लिए। तो शिशुपाल बड़े क्रोध में आ गए, भीम क्रोध में आ गए, भीम मारने के लिए उठे, भीष्म ने रोक दिया। भीष्म ने कहा कि देखो श्री कृष्ण की कोई योजना होगी, शायद श्री कृष्ण इसका उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए तुम नहीं मारो, कृष्ण को मारने दो। और फिर उन्होंने कहा कि इस सभा में जो भी लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण की अग्र पूजा जो हुई है गलत है, वो आए और युद्ध करें, स्वयं श्री कृष्ण युद्ध करेंगे उनसे। किसमें इतनी शक्ति है जो श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहता? तो शिशुपाल आगे आ गए, मैं श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा। देखिए इतना सब सुनने के बाद भी उसको अक्कल नहीं आई, ऐसा कहते हैं, बुद्धि उसकी ठीक नहीं हुई, अभी भी कृष्ण से युद्ध करना है उसको। इतना सुन लिया, कौन है कृष्ण, इतने अवतार ले चुके हैं, बलि महाराज, हिरण्यकश्यपु, इन सबको परास्त कर चुके हैं, ये वही कृष्ण है, इतना सुनने के बाद भी मैं अभी युद्ध करूंगा। समर्पण नहीं है, क्यों? भक्ति नहीं। समर्पण भक्ति से आता है, प्रेम से आता है। व्यक्ति दो रूपों में समर्पण करता है, एक जब उसको कोई और चारा नहीं रह जाता, जब वो सोचता है कि अगर मैंने समर्पण नहीं किया तो मर जाऊंगा, तो दोनों हाथ ऊपर करके आगे आ जाता, ठीक है युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा प्रेम से, और प्रेम से किया हुआ समर्पण बड़ा समर्पण है, वो सच्चा समर्पण है जो हम प्रेम से करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उसको समर्पण करता है तो वो सच्चा समर्पण है। लेकिन केवल किसी के कहने पर, किसी मजबूरी के कारण जो समर्पण किया जाता है वो सच्चा समर्पण नहीं है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वो सच्चा समर्पण नहीं है। और क्योंकि द्वेष से भरा हुआ था शिशुपाल का हृदय, इसीलिए समर्पण नहीं कर पाया। इतना सुनने के बाद भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया कृष्ण से। और फिर अब कृष्ण को उठना ही पड़ा, क्योंकि अगर कोई क्षत्रिय को चुनौती देता है तो फिर क्षत्रिय को तो कर्तव्य है कि वो युद्ध करे। तो फिर श्री कृष्ण उठे, और श्री कृष्ण ने, उसके पहले भीष्म ने शिशुपाल के जन्म की कथा बताई। जब भगवान का वर्णन किया कृष्ण की लीलाओं का, तो शिशुपाल का भी वर्णन किया कि ये जो शिशुपाल ये यहाँ पर है, इसका जन्म हुआ था, तीन आंखें चार हाथ थे इसके, छोटा बालक था जब। और भीष्मदेव कहते हैं कि जब ये पैदा हुआ तो रोने की जगह गधे की तरह रेंग रहा था। ये महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। जब दुर्योधन का भी जन्म हुआ था तो वो भी ऐसे गधे की तरह चिल्लाया था, जिसको देखकर ब्राह्मणों ने कहा था इसको मार डालो। तो शिशुपाल रोने की जगह गधे की तरह रेंगने लगा। माता पिता ने देखा, रे ये क्या हो गया, तीन आंखें चार हाथ, ये बालक है, क्या है, फेंक दे इसको। तो भविष्यवाणी हुई कि आपका पुत्र बहुत शक्तिशाली होगा और अच्छा राजा बनेगा, आप इसको फेंकिए नहीं। तो उसकी माँ ने उस समय पूछा, उसमें भविष्यवाणी में ये भी कहा कि एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों मारा जाएगा। तो उनकी जो माँ थी वो घबरा गई और उन्होंने पूछा, अच्छा आप ये बात बताइए, आपने इतनी भविष्यवाणी कर दी, एक बात और बताइए कि किसके हाथों मरेगा, मुझे ये बता दीजिए। देखिए व्यक्ति होता है वो किसी ना किसी तरह अपनी मृत्यु को दूर करना चाहता है, बस। कोई व्यक्ति नहीं है जो इंतजार करता है, अरे यार ठीक है आने दो मृत्यु, क्या तकलीफ है, जैसे बाकी कष्ट आए जीवन में मृत्यु भी आ जाए। नहीं, हम मृत्यु को दूर करना चाहते हैं, बाकी सब ठीक है। तो वो क्यों पूछ रही थी, ताकि अगर मुझे पता चल जाए कि कौन मारने वाला है तो उससे बचा कर रखूंगी, तो मरेगा नहीं। ऐसा होता है कि कभी कोई व्यक्ति मरता नहीं, जिसको मरना है वो तो कहीं भी मर जाता है, कितना ही बचा लीजिए। अमेरिका में दो बिल्डिंग बनाई गई थी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जब बनाई गई तब कहा कि इसको कोई गिरा नहीं सकता, भूकंप से कुछ नहीं होगा, प्लेन भी आकर क्रैश हो जाए तो कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, दो प्लेन आए, सारी बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग खत्म। लोगों ने एक जहाज बनाया टाइटैनिक, भगवान भी उसे डुबा नहीं सकते। देखिए, कभी ऐसी खुली चुनौती देनी नहीं चाहिए भगवान को, लोगों ने गलती कर दी, शायद डूबता नहीं लेकिन चुनौती दे दी, भगवान भी डुबा नहीं सकते, पहले ही यात्रा में डूब, और ऐसा डूबा कि कुछ ही लोग बचे, सारे मर गए। तो हम मृत्यु से बच नहीं सकते। शिशुपाल की माता चाहती थी मैं अपने बेटे को बचा लूं। ऐसी एक कहानी है, एक बार एक राजा के पास एक साधु आए, छोटा बच्चा उनका देखा, राजकुमार है, इसको आशीर्वाद दीजिए। साधु ने कहा, क्या आशीर्वाद दूं, ये तो मरने वाला है। तो राजा ने कहा, क्या कह रहे हैं आप, मेरी इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतने मेरे सैनिक है, मैं बचा लूंगा, आप बताइए कैसे मरेगा, बस मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, दो चीजें बताइए, ये कैसे मरेगा और कब मरेगा, बाकी मैं देख लूंगा। तो साधु ने कहा, ठीक है, ये आज से 5वें दिन या 10वें दिन इतने बजकर 12:25 पर इसकी मृत्यु होगी। अच्छा, दूसरी बात, कैसे मरेगा, जो भालू होता है, जंगली भालू या जंगली सुअर, उसका जो सींग होता है वो इसके शरीर में घुस जाएगा। तो राजा ने कहा, अब तो आप चिंता ही मत करो, मेरा लड़का मरने ही नहीं वाला। तो उसने कहा, मैं देखता हूँ कैसे होगा। उसने एक बहुत बड़ा महल था उसका, तो महल के सबसे ऊपर कमरे में इसको रखा, और हर फ्लोर पर महल के अपने सिपाही लगा दिए। उन्होंने कहा, भालू और सुअर तो छोड़ो, एक प्राणी अंदर नहीं जाना चाहिए, सिक्योरिटी टाइट। और हर जिस जो दिन आया, समय आया, उस दिन उसने कह दिया कि हर 5 मिनट में मुझे आकर सूचना देना कि बेटा ठीक है या नहीं, और बंद करके रखा है अंदर पूरा, कहीं कोई प्राणी जा ही नहीं सकता, जंगली प्राणी तो भूल जाओ, पालतू भी नहीं जा सकता, और नीचे सारे सैनिक खड़े हैं, कोई ऊपर नहीं। तो राजा अब नीचे थे, राजा खुद नीचे खड़े थे, देखता हूं, तो हर 5-10 मिनट में सैनिक आकर सूचना देते थे, महाराज आपका पुत्र सुरक्षित है, महाराज पुत्र सुरक्षित है। 12 बजे सैनिक आए, महाराज पुत्र सुरक्षित है। 12:10 सैनिक आए, महाराज पुत्र सुरक्षित है। 12:20 महाराज पुत्र सुरक्षित है। 12:25 महाराज आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु हो गई, कैसे, इतनी सारी मैंने सुरक्षा लगाई हुई थी, क्या हुआ। तो उसने बताया कि राजकुमार को अंदर बैठे हुए घुटन हो रही थी, हमने सब बंद करके रखा था, कोई जाए नहीं, तो घुटन हो रही थी, तो घूमने के लिए वो टेरेस पे चले गए, वहां पर बाहर बरामदा था उसमें चले गए, वहां पर एक बहुत ऊंचा पोल लगा हुआ था लोहे का, और उसके अंत में, जो लोहे का खंबा था उसके अंत में एक सुअर बना हुआ था जिसका सींग निकला हुआ था। अब वो लड़का खड़ा था, अचानक वो पोल गिर गया और वो जो सींग था वो उसके शरीर में घुस गया, लड़के की मृत्यु हो गई। एक्चुअली साधु ने ये नहीं बताया था कि असली होगा या नकली। एक कथा इसलिए है कि हम सारी सुरक्षा कर लें तो भी जहां मृत्यु आनी है मृत्यु आ ही जाए। ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं होता कि लोग सड़क पे ही मरते हैं, घर के अंदर भी मर जाते हैं, कहीं पर भी मर जाते हैं, प्लेन में बैठे होते हैं, ट्रेन में चले जाते हैं, कहीं पर भी। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमें मृत्यु नहीं आए, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब यक्ष ने प्रश्न किए, आगे चलकर हम लोग यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को सुनेंगे, जब वनवास होगा तब हम लोग बात करेंगे। तो यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में ये प्रश्न आता है कि यक्ष ने प्रश्न किया, युधिष्ठिर बताओ सबसे आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर ने कहा अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्तावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यतः परम्। वो कहने लगे कि अहनि अहनि भूतानि, हर रोज जीव यमालयम् मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो शेषा शेषा यानी जो बचे हुए हैं, स्थावरम् इच्छन्ति, उनकी इच्छा क्या है, मैं सदैव बना रहूं, बाकी की मृत्यु हो रही है होते रहे, मुझे कुछ नहीं हो। बोले तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। तो इसी तरह शिशुपाल की भी माता चाहती थी मेरा पुत्र मरे नहीं, तो उन्होंने पूछा तो भविष्यवाणी हुई, आवाज आई कि ये बालक उस व्यक्ति की गोद में जब जाएगा जो व्यक्ति इसको मारने वाला है, तो इसकी ये जो तीसरी आंख है वो गायब हो जाएगी, जो दो हाथ हैं मतलब चार चार हाथ हैं उनमें से दो हाथ गायब हो जाएंगे, तब आप जान जाओगे कि यही व्यक्ति इसको मारेगा आगे चलकर। तो फिर ये बड़ा विचित्र बालक पैदा हुआ था, तो सब जगह संदेश भेजे गए, तो सब लोग देखने आ रहे थे कि कैसा बालक है, तीन आंख हैं चार हाथ हैं, सब आते थे। तो जैसे ही आते थे उनके पिता उनको गोद में रख देते थे, लीजिए लीजिए पुत्र को गोद में बिठाइए, और वो देखते थे हाथ गए कि नहीं गए, आंख गया कि नहीं गया, तो अरे नहीं गया ठीक है ये नहीं मारने वाला, दूसरा तीसरा, ऐसे रोज कोई ना कोई अतिथि आते वो गोद में बिठा देते। अब श्री कृष्ण और बलराम ने भी सुना, और उनके तो वो संबंधी थे, उनकी बुआ थी इनकी जो माता थी शिशुपाल की, तो वो भी आए देखने के लिए कि चलो हम भी देखें ये तीन नेत्रों वाला और चार हाथों वाला कौन आ गया। तो कृष्ण आए बलराम जी आए, तो जैसे ही कृष्ण आए तो गोद में दे दिया, और जैसे ही कृष्ण ने गोद में लिया शिशुपाल को, शिशुपाल की तीसरी आंख गायब हो गई, दो जो हाथ थे वो भी चले गए, केवल दो रह गए चार में से। तो उस समय उनको पता चला कि यही मारने वाला है, कृष्ण मारे। तो उनकी माता ने कृष्ण से कहा कि देखो मुझे एक वरदान चाहिए, मैं अब तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मुझे दो। तो कृष्ण ने कहा जो कहे मैं दूंगा, अगर मेरी क्षमता है तो मैं उसको दे दूंगा, आप मांगिए क्या मांगना है, निश्चित होकर मांगिए। तो उन्होंने कहा मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरे पुत्र को मारना नहीं, उसकी हत्या नहीं करना। तो देखिए जो करने वाला है उसी से मार रहे हैं, मांग रही है, मतलब उनकी क्या इच्छा थी, अगर कृष्ण कह दें कि ठीक है मैं हत्या नहीं करूंगा तो मरेगा ही नहीं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है अगर आप चाहती हैं तो मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा, इसके 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा, लेकिन 100 के ऊपर नहीं। तो बचपन से उनकी माँ ने शिशुपाल को सिखाया था अपराध करते करते गिनते रहना, 99 के ऊपर नहीं जाना। तो शिशुपाल तो बचपन से कृष्ण का विरोधी था, बचपन से शिशुपाल जब तोतली बोली बोलता था तब से निंदा कर रहा था कृष्ण की, लेकिन ध्यान रखता था 99 के ऊपर नहीं जाना, तो गिनता रहता था अपराध, ये बोला वो बोला वो बोला, 99 हो गए चुप हो जाता था। तो कृष्ण भी ठीक है अभी 100 नहीं हुए, अगली बार फिर अगली बार फिर। तो ऐसे ये शिशुपाल की कथा बताई। तो अब इस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ये जानते थे, उन्होंने अभी सुना कि मेरी माँ को आशीर्वाद इन्होंने दिवचन दिया और यही मुझे मारने वाले, फिर भी बुद्धि नहीं बदली। देखिए ये कहलाता है अज्ञान, अहंकार। अरे तब तो बुद्धि बदल जानी थी कि हाँ ये मुझे मारने वाले हैं, चरण पकड़ लूं इनके, क्षमा मांग लूं इनसे, बच जाऊंगा। नहीं, इतना अहंकार था कि उस समय भी विरोध करने लगे, और उन्होंने कहा अरे कृष्ण तुमने मेरी माँ को वचन दिया है ना, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तुम मारो या ना मारो, ऐसे कह दिया। तो इस समय राजसूय यज्ञ में जब अपराध करना उन्होंने शुरू किया, तो पिछली बार तो वो काउंट करते रहते थे, गिनते रहते थे, 99 होकर फिर मुंह बंद हो जाए, इस बार वो भूल गए गिनना, वो भूल गए लेकिन कृष्ण नहीं भूले। कृष्ण गिन रहे थे, अच्छा ठीक, इसीलिए शांत बैठे थे, हो गया 98 99 100, 100 हो गया, 101, बस अब कृष्ण उठ गए, खड़े हो गए, बहुत हो गया। और फिर कृष्ण ने कहा सभी जहां उपस्थित थे कि जितने भी भूपाल जितने भी यहां पर राजा हैं वो सुने, ये द्वेषी ये शिशुपाल ये बचपन से हमसे द्वेष करता है। और कृष्ण ने बहुत सारे उदाहरण दिए, उन्होंने कहा एक समय हम लोग द्वारका में नहीं थे, इसने आके द्वारका में आग लगा दी। एक समय मेरे पिताजी कहीं गए थे तो उनको पकड़कर बंदी बना लिया। तो इतना द्वेषी है ये, तो बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए कि बड़ा द्वेषी व्यक्ति है, लेकिन मैंने इसके सारे अपराध माफ किए क्योंकि मैंने इनकी माता को वचन दिया था कि इनके 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा, लेकिन अब इसने सीमा को पार कर लिया है और इसीलिए अब मैं आपके सामने इसका वध करूंगा। और ये सुनकर भी आप सोचिए कि सुन रहा है कि मैं वध करने वाला हूं, कृष्ण बोल रहे हैं, शिशुपाल हंस रहे थे। और फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन का स्मरण किया, स्मरण करते ही चक्र प्रकट हुआ और सबके देखते देखते शिशुपाल का गर्दन काट दी। भगवान ने वध कर दिया शिशुपाल का और शिशुपाल का सर गिरा। और बड़े आश्चर्य की बात, सबने देखा कि उसके शरीर से एक ज्योति निकली और उसने प्रणाम किया श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण में समा गए। ये सबके सामने हुआ, बड़े आश्चर्य से सब देख रहे थे। ये एक प्रकार की मुक्ति है, इसको निर्विशेष मुक्ति कहते हैं, भगवान में लीन हो जाना। भक्तों को ये प्रिय नहीं है क्योंकि जीव का उद्देश्य लीन होना नहीं, और शिशुपाल दरअसल लीन नहीं हुए। शिशुपाल भगवान में प्रवेश करके फिर वे वैकुंठ चले गए अपनी मूल अवस्था में। आप सब जानते हैं शिशुपाल कौन है, जय। शिशुपाल और दंतवक्र ये जय और विजय हैं, जिनको श्राप मिला था कि जाओ असुर बनो, तो इसीलिए केवल आए थे, फिर अपने स्थान पर वापस चले गए। तो इस तरह शिशुपाल का वध हो गया। और फिर भी युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे, जब ये सब चल रहा था, जब शिशुपाल विरोध कर रहा था तो युधिष्ठिर बड़े चिंतित थे, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या करना है। कृष्ण कह रहे थे अरे चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर शिशुपाल का वध हुआ, युधिष्ठिर ने कहा कि इसका अंतिम संस्कार करें। देखिए यज्ञ होना है, यज्ञ में, लेकिन वहां पर अंतिम संस्कार उसका कहीं दूर जाकर किया गया, फिर उसके पुत्र को राजा बनाया गया और फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो बहुत अच्छा यज्ञ चला, यज्ञ का भी बहुत वर्णन है कि वहां ब्राह्मणों को सोने की थालियों में भोजन परोसा जा रहा था, हजारों ब्राह्मण थे और उनको सोने की थालियों में भोजन परोस रहे थे। तो ये ऐश्वर्य का लक्षण नहीं कि युधिष्ठिर महाराज दिखला नहीं रहे थे कि देखो कितना सोना है मेरे पास, मैं तुम्हें सोने की थाली में खिला रहा हूं, नहीं, ये मान देने के लिए होता। कभी कोई ऐसे वरिष्ठ आए तो उनको मान देने के लिए किया जाता है। आज भी ये प्रथा है, हम जानते हैं। पिछले साल हम किसी के घर पर गए थे प्रसाद के लिए, तो उन्होंने चांदी की थालियां, चांदी के बर्तन सारे थे। तो आज भी ये प्रथा है, ऐसा नहीं है कि उसमें ऐश्वर्य दिखाने की बात है। तो ऐसे हजारों ब्राह्मणों को खिलाया जा रहा है, भोजन बट रहा है, कभी कमी नहीं। तो ऐसे बहुत सारा वर्णन यज्ञ का हुआ, उपहार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और अंततः ये पूरा हो गया यज्ञ। फिर धीरे धीरे सारे राजा जाने लगे, सबने अनुमति मांगी युधिष्ठिर से, तो केवल युधिष्ठिर ने सबको अनुमति दी, अब कृष्ण रह गए। और कृष्ण ने भी अनुमति मांगी कि अब मैं भी जाना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं कैसे कह सकता हूँ आपको जाने के लिए, मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ द्वारका में भी आपको जाना है। तो फिर कृष्ण भी कुंती महारानी से मिलकर, द्रौपदी सुभद्रा से मिलकर, फिर वे भी वापस चले गए। और अब व्यासदेव जाने वाले थे। तो जब व्यासदेव जाने लगे तो उस समय युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया व्यासदेव से, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो शिशुपाल का वध हुआ, ये ऐसा वध या ऐसी स्थिति किसी आपदा के समय आती है, बहुत बड़ा जब कोई नुकसान होने वाला होता है तब ऐसा होता है। तो क्या शिशुपाल के वध से जितनी भी तकलीफें, जितने भी कष्ट, जितनी भी आपदाएं आने वाली थी वो समाप्त हो गई या और आने वाली हैं? व्यासदेव से उन्होंने पूछा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, भविष्य का पूछ रहे हैं कि क्या सारी तकलीफें कष्ट हो गए, मतलब अब मैं आराम से राज्य का, सब लोग बोल कर गए हैं उनको अभी अभी, सारे राजा, और सारे राजा उनको कर देते थे केवल वृष्णि वंशियों को छोड़कर, क्योंकि वृष्णि वंशियों से प्रेम है कृष्ण से, वो कर नहीं लेते थे और उनका संबंध था, और अन्य जो पांचाल नरेश इत्यादि उनसे संबंध था, तो उनको छोड़कर बाकी सब राजा कर देते थे उन्हें। तो जो राजा कर दे रहे हैं अभी भी बोल कर गए हैं युधिष्ठिर महाराज आपने बहुत अच्छा किया, अब सम्राट हैं हम, सदैव आपके साथ हैं, तो क्या कष्ट हो सकता है, कौन युद्ध कर सकता है। फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि व्यासदेव मुझे बताइए क्या ये संकट टल गया या अभी संकट आने वाला है। व्यासदेव ने कहा युधिष्ठिर ये जो शिशुपाल के वध से संकट शुरू हुआ है ये अगले 13 वर्षों तक रहेगा, ये अभी टला नहीं है। और ये जान लो कि तुम्हें निमित्त बनाकर इस जगत के, इस दुनिया में जितने भी राजा हैं उन सब का वध होगा और तुम उसके निमित्त होगे, और ये 13 वर्ष तक चलेगा। ये सुनकर युधिष्ठिर एकदम घबरा गए और फिर व्यासदेव चले गए। उन्होंने पूछा कोई उपाय, कोई उपाय नहीं, ये तो होना ही है, विधि का विधान है। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, सबको बुलाया और सुना तुमने क्या कहा व्यासदेव ने। व्यासदेव ने कहा कि मेरे कारण जितने भी पृथ्वी के राजा हैं ये मारे जाएंगे अगले 13 वर्षों में, तो इसीलिए अच्छा यही है कि मैं अभी अपने प्राण त्याग देता हूं, युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि मुझे विधि ने निमित्त बनाया है और मेरे कारण सारे राजा मारे जाएंगे, इससे अच्छा मैं मर जाऊं तो सारे राजा बचे रहेंगे, तो मैं अभी अपने प्राण दे देता। तो सब भाइयों ने कहा नहीं नहीं देखिए जो विधि का विधान है वो तो होना, तो जो रचा गया है उसको तो आप बदल नहीं सकते, तो इसीलिए आपको राज्य करना चाहिए। बहुत समझाया, बहुत युधिष्ठिर कह रहे थे कि नहीं मैं प्राण दे देता हूं, तो उन्होंने समझाया कोई नहीं आप राज्य कीजिए। तो फिर उन्होंने राज्य करना स्वीकार किया, क्योंकि भाइयों ने कहा कि जब श्री कृष्ण ने आपसे नहीं कहा, क्या वो नहीं जानते कि ऐसा सब होने वाला है, लेकिन उन्होंने आपसे नहीं कहा इसीलिए आपको राज्य करना चाहिए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने राज्य करना स्वीकार किया और फिर वो राज्य करने लगे। तो ऐसे युधिष्ठिर देखिए कितना अच्छा भाव है कि दूसरों को कष्ट देने से अच्छा मैं स्वयं कष्ट ले लूं। हमें जीवन में ये सीखना चाहिए, हमारे जीवन में ये सिद्धांत तो होना चाहिए, सच्चा सुख क्या है। सच्चा सुख दूसरों को कष्ट देकर प्राप्त हुआ सुख सच्चा सुख नहीं है। अगर हमें दूसरों के सुख, दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए अगर हमें थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ता है, तो वो कष्ट लेना ज्यादा अच्छा है उससे कि हम सुख प्राप्त करें दूसरों को कष्ट देकर। तो मनुष्य जीवन में हमें ये सीखना चाहिए कि दूसरों को कष्ट देकर जो सुख होता है वो सुख नहीं है, वो तो केवल दुख ही दुख है और आने वाले दुखों की सूचना है। हमें दूसरों को सुख देने का प्रयास करना चाहिए। आप एक कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की, एक ऐसे दुनिया की जहां हर व्यक्ति दूसरे को सुख देने के लिए खुद कष्ट लेने के लिए तैयार है, जैसे युधिष्ठिर महाराज, कितना अच्छा समाज होगा। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं सोचेंगे, एक दूसरे के ऊपर अपना अस्तित्व जमाने के लिए नहीं सोचेंगे, एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, केवल प्रेम होगा, हम दूसरे के भले के लिए कार्य कर रहे हैं, बस कितना अच्छा समाज होगा वो। एक दो मिनट आप अपने मन में केवल एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए, ऐसा समाज जो जहां हर कोई दूसरे को सुख देने के लिए कार्य कर रहा है, अपने दुख की उसे चिंता नहीं है, उसके जीवन में कष्ट आ रहे हैं वो तैयार है, दुख आ रहे हैं वो तैयार है, लेकिन वो दूसरों के जीवन में दुख देख नहीं सकता, उनको सुख प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा। ये आदर्श समाज होगा। आज हम सब केवल अपने सुख के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए समाज में सुख नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सुख के लिए लगा हुआ है, स्वार्थी हो गया, केवल अपना सुख। लेकिन अगर यही हम इस भावना को बदलें, यही चीजें सीखनी है हमें महाभारत रामायण से, हमें महाभारत से युद्ध करना नहीं सीखना है, हमें महाभारत से चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीखना है, हमें महाभारत से यही चीजें सीखनी है जो युधिष्ठिर सिखला रहे हैं, कि क्यों नहीं दूसरों को सुख देने के लिए हमारा जीवन हो, कितना सुखी वो जीवन होगा और कितनी सुखी वो मृत्यु होगी जहां हम संतुष्टि से मर सकेंगे, ये सोचकर कि मैंने जीवन भर दूसरों को आनंद देने के लिए अपना जीवन दिया। ऐसा जीवन और ऐसी मृत्यु, ये गुणगान करने योग्य है। और इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए महाभारत की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। आप प्रयास कीजिए, कम से कम दिन में एक बार एक ऐसा काम कीजिए जिससे किसी दूसरे को सुख प्राप्त हो, कोई ऐसा काम जिससे किसी दूसरे के चेहरे पर आप मुस्कान ला सकें, वो व्यक्ति प्रसन्न हो। हर रोज एक ऐसा काम कीजिए, केवल बस एक काम जिससे दूसरा प्रसन्न हो सके। वैसे तो हमें जीवन देना चाहिए दूसरों के लिए, लेकिन फिर भी शुरुआत एक कार्य से कर सकते हैं। क्योंकि ये बात जान लीजिए, जो आनंद देने में है वो लेने में नहीं है। सच्चा आनंद नहीं है लेने में। अगर सच्चा आनंद होता तो आज जिन्होंने बहुत बटोर रखा है, बहुत इकट्ठा कर रखा है, वो सबसे प्रसन्न होते। लेकिन सही बात बताएं तो वो सबसे दुखी लोग हैं जिन्होंने बहुत बटोर कर रखा है, जीवन भर उसको संभालने के लिए चिंता में रहते हैं। धन चीज ही ऐसी है, चाणक्य पंडित कहते हैं कि धन अगर आता है तो भी दुख देता है, जाता है तो भी दुख देता है। ऐसा ही है धन, बड़ा विचित्र चीज है। एक बार कोई बता रहे थे कि धन ऐसा है कि जिसके जब धन आता है तो वह व्यक्ति लोगों को भूल जाता है, दूसरों को, और जब चला जाता है तो दूसरे उसको भूल जाते हैं। यही है धन, है ना, जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए दूसरों के लिए जीना, दूसरों को सुख देने के लिए जीना, अपने दुख के लिए कोई चिंता नहीं करना। थोड़ा बहुत दुख मिला ठीक है, लेकिन इससे दूसरे को सुख होता है, तैयार। तो भक्त के जीवन में एक सिद्धांत बहुत आवश्यक है, तपस्या अपने लिए, सुविधा दूसरों के लिए। आजकल हमारा उल्टा है, सुविधा अपने लिए, गुलाब जामुन पहले मुझे मिलना चाहिए, प्रसाद पहले मुझे मिलना चाहिए, कहीं बाद में खत्म हो गया तो। ये नहीं सोचते कि अगर खत्म हो गया तो दूसरे को नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो आज से आप लोग ये करना सोचिए, गुलाब जामुन दूसरे के लिए, मैं करेला खाकर सुखी रह सकता हूं, ठीक है। तपस्या दूसरों के लिए, ठीक है, नहीं कि हाँ, सुविधा मेरे लिए, तपस्या दूसरों के लिए, ये जीवन का सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है, हाँ या ना ना, हाँ, ऐसा नहीं, ये सिद्धांत नहीं होना चाहिए। आज तक ये सिद्धांत है, इसको बदलिए, तपस्या मेरे लिए, सुविधा दूसरों के लिए, ठीक है। तो आज से आप सब लोग एकदम लास्ट में प्रसाद लीजिएगा। पहला कौन लेगा, माता जी का प्रश्न है। सब लोग आखिर में लेंगे, खड़े रहेंगे, नहीं नहीं आप पहले, आप पहले, आप पहले।